श्रीमद्भागवतम सातवां स्कंद नौवां अध्याय श्लोक संख्या 35। सात्वात्मयोनि रति विस्मिता शितोब्जम् कालेन तीव्र तपसा परिशुद्ध भावा त्वामात्मनीषा भुवि गन्धम् इवाति सूक्ष्मम् भूतेन्द्रियाशयमे विततं ददर्श। अनुवाद शब्द तात्पर्य कृपया आप सुनिए। यहाँ पर अहम ब्रह्मास्मि के रूप में आत्म साक्षात्कार के कथन की विवेचना की गई है, जिसकी व्याख्या मायावादी दर्शन के अनुसार मैं परमेश्वर हूं के रूप में की जाती है। परमेश्वर प्रत्येक वस्तु के आदि बीज हैं। जन्मादि यस्यता अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इस प्रकार भगवान सर्वत्र व्याप्त है, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी, क्योंकि ये भौतिक शक्ति से बने हैं जो भगवान की भिन्ना शक्ति है। हमें यह अनुभव करना चाहिए कि चूंकि परमेश्वर हमारे शरीर में व्याप्त है और चूंकि विष्टि जीवात्मा परमेश्वर का अंश है, अतः प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है। सर्वम कल्पितम ब्रह्म। ब्रह्मा को यह अनुभूति शुद्ध होने के बाद हुई और यह हर एक के लिए संभव है। जब मनुष्य अहम ब्रह्मास्मि के पूर्णतः ज्ञान में रहता है तो वह सोचता है मैं परमेश्वर का अंश हूं, मेरा शरीर उनकी भौतिक शक्ति से बना है, अतः मेरा कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। यद्यपि फिर भी परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है, वह मुझसे पृथक है। अचिंत्य भेदा भेद तत्व का यही दर्शन है। यहाँ पर पृथ्वी के भीतर गंध का उदाहरण दिया गया है। पृथ्वी में गंध है और रंग है, किंतु कोई उन्हें देख नहीं सकता। वास्तव में हम देखते हैं कि जब पृथ्वी से फूल उगते हैं तो वे विभिन्न रंगों एवं सुगंधों वाले दिखते हैं। निश्चय ही फूलों ने इन्हें पृथ्वी से प्राप्त किया होगा, यद्यपि यह हमें पृथ्वी में दिखते नहीं। इसी प्रकार परमेश्वर अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा हमारे शरीर तथा आत्मा में विस्तार करते हैं, यद्यपि हम उन्हें देख नहीं पाते, किंतु एक बुद्धिमान मनुष्य परमेश्वर को सर्वत्र व्याप्त देख सकता है। अंडांतरस्थम परमाणु चांतरस्थम। भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों से ब्रह्मांड के भीतर तथा परमाणु के भीतर रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए परमेश्वर का असली दृश्य यही है। आदि जन्मा ब्रह्मा अपनी तपस्या के कारण अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति बने और तब उन्हें यह अनुभूति हुई। अतः हमें उन ब्रह्मा से सारा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो अपनी तपस्या के कारण सिद्ध बने। अवज्ञान्तिमरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवान् च श्रीरूपं सागरजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं च जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। प्रहलाद महाराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए नरसिंहदेव जी को प्रार्थना कर रहे हैं, और इस प्रार्थना में ब्रह्मा जी के जन्म के इतिहास को संक्षेप में बताया है। भागवतम के तीसरे स्कंद के आठवें अध्याय में ये प्रसंग विस्तार से बता रहे हैं मैत्रेय मुनि। तो ब्रह्मा जी के जन्म का इतिहास क्या है, उन्होंने जन्म के बाद किस प्रकार ज्ञान प्राप्त किया और क्या उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और प्रभुपाद समझाया तात्पर्य में कि हमें भी ऐसे ही करना है और ये संभव है सभी जीवात्मा के लिए, उसका करना कर्तव्य भी है। तो आत्मयोनि, आत्मयोनि मतलब जिनकी कोई माता नहीं, स्वयंभू अजा या पद्मजा मतलब कमल के पुष्प पर जिनका जन्म हुआ, तो जन्म होने के पश्चात अति विस्मिता बहुत आश्चर्यचकित हुए, बहुत आश्चर्य हुआ उनको, क्योंकि वो अपना नाम भी नहीं जानते थे। हम भी देखा जाए तो अपनी वास्तविक पहचान नहीं जानते, लेकिन अपना नाम तो बताई देते हैं कि हमारा नाम ये है, मुझे हमारी भौतिक पहचान सही। और ब्रह्मा जी को अपना नाम भी नहीं बताता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्रोत क्या है, क्या करना है, क्या उद्देश्य है, कुछ नहीं मालूम था। इसे मैंने अति विस्मिता, जैसे प्रभुपाद जी इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए मायापुर में बता रहे हैं प्रवचन में, मान लीजिए किसी आप सो रहे हो गहरी नींद में और अचानक आपको उठाकर किसी ऐसी जगह में डाल दिया जाए जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा और कुछ ना हो, उसके अलावा आसपास दूर दूर तक कुछ नजर ना आए, केवल अंधेरा, आपको पता नहीं कहाँ से आए हो, क्या करना है, तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित होगा, भयभीत भी हो सकते हैं, कहाँ गया मैं, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा उद्देश्य है, क्या करना है। तो इसी प्रकार से वगैरह जब जन्म होता है तो हम सब की ये हालत होती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये होता है कि जब व्यक्ति माता के गर्भ से बाहर आता है तो उसको अंधेरा नहीं, उसको तो रोशनी मिलती है। तो ब्रह्मा जी ने तो प्रयास किया जानने का कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ, कौन हूँ, लेकिन जब एक बद्ध जीव का जन्म होता है तो उसके रिश्तेदार, उसके माता पिता, वो सब उसको भुला देते हैं, ये कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है, एक नकली पहचान उसको मिल जाती है, वो अपनी असली पहचान जानने की कोशिश ही नहीं करता, यानी कि एक नींद से जागता है और दूसरी नींद में सो जाता है। इसलिए बोलते हैं ना, कत निद्रा जाए माया पिशाची ने बोले, जीव जाओ जीव जाओ, वो भी सो रहा है, उसको पता नहीं, या जो उसको पता है वो उसकी वास्तविकता नहीं है। तो और बहुत से तरह जीव होते हैं जो कि माता के गर्भ से बाहर ही नहीं आ पाते, प्रभु तत्व सूर्य की रोशनी देखने नसीब भी नहीं होती उनको, माता के गर्भ में उनकी हत्या कर दी जाती है। आजकल तो वगैरह के संसार में एक प्रवचन बताते हैं, पदम पदम युगदाम हितेशम है, पद पद पे संकट है, वगैरह की आप माता के गर्भ में भी सेफ नहीं, वहां भी सुरक्षित नहीं है, आपकी माता ही आपका वध कर देगी। तो ये भी अभी कल मुझसे हो रहा है। तो बताते ब्रह्मा जी भी मुक्त नहीं है, ब्रह्मा जी की पोस्ट बहुत बहुत ऊंची पोस्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा भी है उनकी, लेकिन वो भी जब उत्पन्न हुए तो वो बिल्कुल ज्ञान नहीं थे, कुछ नहीं जानते थे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है। लेकिन ब्रह्मा जी पोस्ट को प्राप्त करने के लिए कितने पुण्य संचित हुए होंगे, हर किसी को तो ब्रह्मा की पोस्ट नहीं मिलती, हर किसी को तो ब्रह्मा का पद नहीं मिल सकता। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पिछली सृष्टि में कोई इतना व्यक्ति होता ही नहीं योग्य कि उसको ब्रह्मा का पद दिया जाए, उस पद के योग्य कोई नहीं होता, तो स्वयं भगवान श्री विष्णु जो है वो उस पद का कार्यभार संभालते हैं, अपना विस्तार करते हैं। कितने महत्वपूर्ण पद है, रूपों समझाते हैं। बिना तपस्या के उनका भी शुद्धिकरण नहीं हुआ, वो ये तक भी नहीं जानते थे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या आत्मा, मुझे क्या करना है। तो पॉइंट ये है कि बिना भगवान की भक्ति के, भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या जो की जाती है, उसके बिना जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। बड़े से बड़ा पद प्राप्त करा जा सकता है, ब्रह्मा का पद ही क्यों ना प्राप्त कर ले, लेकिन ब्रह्मा का पद प्राप्त करने के बाद भी, जैसा कि हम यहाँ पढ़ते हैं भागवतों में बार बार, है ना, लिखा कि सैकड़ों वर्षों तक तीव्र तपस्या, तपस्या भी ऐसी नहीं, तीव्र तपस्या उनको करनी पड़ी। पहले ब्रह्मा जी ने अपना प्रयास किया, वो कमल की नाल में गए, जाते रहे, वो कहीं उसका वो पता नहीं लगा पाए कि इसका स्रोत कौन है, कहां से आ रही है। जब इतना प्रयास किया तो फिर भगवान की कृपा हुई और फिर उनको प्रेरणा मिली कि आप तपस्या करो, कैसे तपस्या करूं, क्या मंत्र है, सब उनको भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। और सैकड़ों वर्ष तक उन्होंने तीव्र तपस्या की, कठोर, और तब जाकर के उनको ये सभी ज्ञान प्राप्त हुए, सब बता रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापक हैं। फिर वो जान पाए कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्गम कौन है, मैं कहाँ से आया, भगवान के दर्शन हुआ, सभी कुछ उनको प्राप्त हुआ। तो तपस्या के बिना शुद्धिकरण जो है वो संभव नहीं है, और शुद्धिकरण के बिना भगवान की सेवा, भगवान को जानना संभव नहीं है। तो पहले प्रयास करना पड़ेगा, भगवान की कृपा मिलेगी, जैसा कि हम कार्तिक मास में ये सुनते हैं, प्रयास और कृपा। और फिर जब हम उस कृपा से प्राप्त कर, कृपा को प्राप्त करके तपस्या करेंगे गुरु के मार्गदर्शन में, तब हमें ज्ञान प्राप्त होगा, हमारा शुद्धिकरण होगा, तभी हमारा जीवन जो है सफल होगा। तो तपस्या, जैसे हम जानते हैं, तपस्या क्या है, स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को स्वीकार करना अपने शुद्धिकरण के लिए, नियमों का पालन करना। जब लोग समझाते हैं बड़ा साधारण सा उदाहरण देके, जैसे हम कहीं सड़क पर जा रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो अचानक लाल बत्ती होती है तो हमें रुकना पड़ता है। तो रुकना नहीं चाहते लेकिन रुकना पड़ता है, क्योंकि नियम है, यदि नहीं रुकेंगे तो उसका दंड मिलेगा, फाइन होगा। तो ये उदाहरण, थोड़ा तपस्या का उदाहरण को बताते हैं, जैसे नियमों का पालन करना ना चाहते हुए भी आपको कष्ट है रुकने में, लेकिन आपको रुकना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक विधि हमने अपनाई है, हम सब भक्ति योग का अभ्यास कर रहे हैं, तो भक्ति योग में जो नियम है उन नियमों का पालन करना वो सब तपस्या है। मुख्य रूप से चार नियम है, फिर साधना है, सुबह जल्दी उठना सब करना। तो ये जो तपस्या जो है ये करनी होती है, और तपस्या कैसे करनी, तीव्र तपस्या। और उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है अपना शुद्धिकरण करके भगवान को प्रसन्न करना। केवल शुद्धिकरण नहीं, उससे क्या, शुद्धिकरण करके भगवान को प्रसन्न करना, तपोदिव्यम। जैसे ऋषभ देव जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है तपस्या करना, दिव्य तपस्या करना, क्योंकि ये जो तपस्या है ये करनी तो हरेक ही को प्रवर कहते हैं, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक को भी तपस्या करनी पड़ेगी, लेकिन चींटी तो नहीं कर सकती या पशु नहीं कर सकते, वो जब मनुष्य योनि में आएंगे तो करेंगे। केवल एक मनुष्य की योनि ऐसी है जिसमें व्यक्ति तपस्या कर सकता है, अपने अस्तित्व को शुद्ध कर सकता है। तो वास्तव में ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य भी है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि वो तपस्या करे अपने अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए, जानने के लिए, प्रश्नों का उत्तर पाए कि भाई मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों इतने कष्ट हैं, वो समाप्त ही नहीं होते, क्यों मैं हमें कष्ट भोग रहा हूं। ये तरह तरह के जीव भगवान ने बनाए, 84 लाख प्रकार के, ये अलग अलग प्रकार की योनियां क्यों हैं, इनमें क्या अंतर है, मैं मनुष्य हूं, ये कुत्ता क्यों है, ये बिल्ली क्यों है, इसमें मुझ में क्या अंतर है, क्या विशेष है, उसको अंतर होगा। ये सब प्रश्नों का उत्तर जो है मनुष्य योनि में ही प्राप्त कर सकते हैं और करना चाहिए, और उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। भगवद्गीता में 3 द्वारी तपस्या बताते हैं, तो हमें तो दिव्य तपस्या करनी है, किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपने शुद्धिकरण के लिए, दिव्य तपस्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जब वो तपस्या करेंगे तब हम इन प्रश्नों का उत्तर खोज पाएंगे। कई बार तीव्र तपस्या सुनकर के थोड़ा भय होता है कि ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार तपस्या की, तीव्र तपस्या तो हम कैसे कर सकते हैं इतना लंबे समय तक। हमारे कलयुग में तो आयु नहीं है, 100 वर्ष की आयु की सीमा है। अभी 100 वर्ष भी कोई किसी की आयु होती नहीं है, बहुत ही कोई बिरला रेयर होता है। कोई 60-70 साल हो तो कहते हैं हाँ ठीक है, काफी आयु हो गई। तो इतनी कम आयु में कितनी तपस्या कर सकते हैं। तो कलयुग में भगवान जो है, भगवान की बहुत ही महावदन्य आई है, महाप्रभु ने बहुत ही आसान हमारे को तपस्या दी है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 वतिरंजना। कहते कलयुग का ही जो कलमश है इसको नाश करने के लिए केवल एक ही उपाय है, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही केवल। तो वो कह रहे हैं कि भौतिक कलमश को नष्ट करना कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और वहां पर कह रहे हैं इसका एक ही उपाय कलयुग में, वो है भगवान के नामों का जप केवल। वो पूछ सकते जी क्या प्रमाण है इसका कि केवल भगवत नाम जपने से, भगवान के नामों को जप करने से जो है हमारा जो है तपस्या हो जाएगी, मतलब हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा। तो प्रमाण सारे शास्त्र बताते हैं कि महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, तो भगवान जो बोलते हैं वही प्रमाण होता है। भगवत को साक्षात धर्म को साक्षात भगवत प्रणीता, जो भगवान ने कहा वही वही क्या प्रमाण है। दूसरा भागवतम में महाप्रभु ने स्वयं तो कभी बताया नहीं कि मैं भगवान है ना, इसलिए वो शास्त्रों का कोट करते हैं महाप्रभु। कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करने मात्र से इस कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत आसान तरीका है कि केवल भगवान के नामों का जप करें, जैसा कि ये ब्रह्मा जी का संप्रदाय है। जैसे यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उन्हें हमें उन ब्रह्मा जी सारा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो अपनी तपस्या के कारण सिद्ध बने। तो हम तो ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ब्रह्मा जी का ही जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ वही ज्ञान ब्रह्मा जी के संप्रदाय में प्रभुपाद के माध्यम से हम तक आ रहा है। तो हमें जो तपस्या की विधि, जो भक्ति योग का जो विधि हमें दी गई है उसमें सब कुछ है, उसमें तपस्या भी है, यज्ञ भी है, दान भी है, सब कुछ है। यदि हम उसको करें दृढ़ता पूर्वक तो निश्चित रूप से हम भी शुद्ध जाएंगे और हम भी भगवान को जान पाएंगे। लेकिन तपस्या के बिना होगा नहीं। ब्रह्मा जी जो हमारे दादा पितामह कहलाते हैं, क्योंकि हम मनु की संतान है और ब्रह्मा जी मनु के पिता है। तो जो हमारे दादाजी ने जो किया वो हमें भी करना पड़ेगा, वही विधि अपनानी पड़ेगी जो ब्रह्मा जी ने हमें दी है, यानी कि तपस्या। लेकिन हम ब्रह्मा जी की तपस्या नहीं कर सकते, सैकड़ों वर्ष हमारी आयु नहीं है उतनी। तो हमें जो विधि बताई जाती है गुरु के द्वारा, आचार्यों के द्वारा तपस्या की, वो हमें अपनानी पड़ेगी। लेकिन तपस्या के बिना होगा नहीं। और जब हम तपस्या करेंगे तब हमारे को इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो तपस्या के बाद ब्रह्मा जी को जो है उनका शुद्धिकरण हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ परिशुद्ध भावा। और क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने देखा कि भगवान सर्वव्यापक है, सब जगह उपस्थित है। यहां तक कि उनका शरीर और वो स्वयं भी, ब्रह्मा जी भी जीव है, हम सब की तरह ब्रह्मा जी भी एक जीव है, लेकिन हमसे बहुत उनकी योग्यता बहुत ज्यादा है। जैसे हम यहाँ संसार में देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत धनवान होता है, किसी के पास कोई भी एक ऐश्वर्य या दो ऐश्वर्य तीन ऐश्वर्य किसी को ज्यादा होते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी जो है वो हमारे से बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, बहुत ज्यादा योग्यता है उनकी, लेकिन वो भी एक जीव है। तो ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ ये शुद्धिकरण के बाद, तपस्या के बाद, कि मैं भगवान का अंश हूं। तो प्रभुपाद यहां चोट करते हैं मायावाद पे, अहम ब्रह्मास्मि जैसे कि मायावादी बोलते हैं या ज्ञानी बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। वो कहते हैं कि बस मैं भगवान हूँ, यानी कि सब भगवान है, और अभी अलग से भगवान जो है उनका अस्तित्व जो है नहीं है। ये मायावाद फिलोसफी है। इसको प्रभुपाद ने भगवद्गीता के दूसरे अध्याय के 12 श्लोक में बड़ा इसका खंडन किया कि अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ ये नहीं है कि अभी हम सब भगवान हो गए, हम भगवान के अंश हैं और हमारा ये शरीर है ये भगवान की जो भौतिक शक्ति है उससे बना है। जितना भी आध्यात्मिक और भौतिक जगत है, सृष्टि है, वो सब भगवान की परा और अपरा शक्ति का प्रकट्य है। इसी प्रकार से शरीर भी जो है परा और अपरा शक्ति का संयोग है, यानी कि जो जीव यानी कि जो मैं हूं वो भगवान की परा शक्ति, भगवान का अंश, और ये जो मेरा शरीर है ये जो भगवान की अष्टा भिन्न प्रकृति है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, उससे ये शरीर बना है। इसी प्रकार से संसार में प्रत्येक वस्तु इसी प्रकार है, सभी कुछ जो है भगवान की भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति का प्रकट है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से भगवान जो है वो सर्वव्यापक है, लेकिन सर्वव्यापक होते हुए भी भगवान अलग है। तो ये है तत्व अचिंत्य भेदाभेद तत्व जो हमें समझाया जाता है, हम सुनते हैं बार बार कि जीव जो है भगवान से अलग भी है, उसमें भेद भी है लेकिन अभेद भी है। बहुत से उदाहरण लोग समझाते हैं, जैसे सोने की बहुत बड़ी खान, उसका एक छोटा सा अंश या सागर की बूंद है ना, इस प्रकार से एक भी है, यानी कि गुणात्मक दृष्टि से एक है लेकिन मात्रा की दृष्टि से उसमें भेद है। ब्रह्म का अंश है लेकिन भगवान नहीं है, स्वयं ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का अंश है, इसलिए बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ये इसकी सही व्याख्या प्रभुपाद समझा दें। तो गीता में भी 9वें अध्याय के 4 श्लोक में यही बात भगवान बता रहे हैं, बिल्कुल यही, मैं ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिनाम मतस्थानी सर्वभूतानी न चाहम तेषु अवस्थिता, ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं, मैं अलग हूं उनसे। तो रोज समझाते हैं, बड़ा अच्छा तात्पर्य है, 2 मिनट में हम पढ़ देते हैं, आप सुनिए। भगवान श्री कृष्ण के नाम यश लीला आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हम कह रहे हैं पहले शुद्धिकरण करना पड़ेगा। शुद्धि के जब तक तपस्या के द्वारा हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा, जो भक्ति योग की विधि हमने अपनाई है उसके द्वारा जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक हम अपने इंद्रियों से भगवान को नहीं जान पाएंगे, जैसे ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए, इतनी ऊंची योग्यता होने के बावजूद भी जो कि ब्रह्मा के पद के योग्य हैं उसके बाद भी उन्हें भगवान को जानने के लिए अपना शुद्धिकरण करना पड़ा। बिना तपस्या के कभी भी हमारी सत्ता शुद्ध नहीं होगी, हम जान नहीं पाएंगे। अथा श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवा दो स्वमेव स्मृति अदा। तो भगवान को जाने के लिए उनके नाम उनका गुण उनकी लीलाएं वो जो है हमारे भौतिक इंद्रियों से परे हैं। जब हम जीवा को सबसे पहले भगवान की सेवा में लगाएंगे, तपस्या की शुरुआत करेंगे, तब हम इनको जान पाएंगे। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। तो ये कैसे होना चाहिए, तपस्या की विधि क्या है, ये समुचित निर्देशन में गुरु के आचार्य के निर्देशन में होती है। अपने आप हम कोई तपस्या की विधि बना लें उससे नहीं होती। संसार के भौतिकवादी लोग भी तपस्या करते हैं, भौतिक जीवन में तपस्या के बिना चलता नहीं काम, वो भी करते हैं, कितना कष्ट उठाते हैं, धन कमाने में क्या तपस्या नहीं है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत से लोग सुबह सुबह उठते हैं, वो भी उठते हैं सुबह सुबह जॉगिंग करने के लिए जाते हैं, 2 किलोमीटर दौड़ के जाएंगे फिर वापस आएंगे 2 किलोमीटर दौड़, तो तपस्या वो भी कर रहे हैं, लेकिन उस तपस्या से हम भगवान को नहीं जान सकते। तपस्या जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए और समुचित निर्देशन में होनी चाहिए। ब्रह्म संहिता में कहा गया है प्रेमांजन छोड़ते भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। तो तपस्या से शुद्धिकरण होकर की स्थिति आएगी, जैसे ब्रह्मा जी देख पाए भगवान को कि भगवान जो है शयन कर रहे हैं, गर्भवशाई विष्णु उनकी नाभि से कमल निकला है उसके ऊपर, सब कुछ उनको फिर स्पष्ट वो देख पाए। इस प्रकार से सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है, लेकिन सामान्य लोग ऐसे नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि उन्होंने दिव्य तपस्या नहीं की। यहां पर कहा गया है कि यदि भगवान सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। तो वह पूछ सकता है कि अब तपस्या करने के बाद हमारी इंद्रियां तो भौतिक ही रहेंगी, लेकिन भक्तियों का अभ्यास करने से, भक्ति करने से व्यक्ति की इंद्रियां जो है भौतिक होते हुए भी उनमें जो आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि यदि एक लोहे की छड़ जो है वो अग्नि में रखी रहती कॉन्स्टेंटली लगातार, तो फिर वो इतनी लाल हो जाती है, रेड हॉट, कि फिर वो है तो लोहे की छड़ लेकिन फिर वो अग्नि का कार्य करती है। यानी कि भौतिक पदार्थ है लेकिन इस भौतिक पदार्थ में जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो फिर ये आध्यात्मिक बन जाता है, और फिर हम जो है उस आध्यात्मिकता से भगवान को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका संकेत अव्यक्त मूर्ति ना शब्द द्वारा हुआ है। भले ही हम उन्हें ना देख सकें किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। जैसे भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार से मोती जो है वो माला में बंधे रहते हैं तो हम धागे को नहीं देख पाते, लेकिन धागा है लेकिन दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से ये पूरा जो सृष्टि है ये भगवान पर आश्रित है, सर्वव्यापक है भगवान। जैसे कि सातवें अध्याय में बताया जा चुका है कि संपूर्ण दृश्य जगत उन्हीं की दो विभिन्न शक्तियों, परा या आध्यात्मिक शक्ति तथा अपरा या भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी पर, उसी शक्ति पर टिकी हैं। जैसे यहां ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ कि भगवान सर्वव्यापक है, भगवान के बिना कुछ रह नहीं सकता, सब कुछ उन्हीं की भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रकट है, सेव मात्र है। लेकिन ये बोलना कि ठीक है अभी भगवान सर्वव्यापक हो गए या भ्रम जो है वो सर्वव्यापक हो गए तो अभी उनका अस्तित्व नहीं रहा, ये गलत है। प्रभु जी फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी, ये निष्कर्ष नहीं, ये मायावाद। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए ही भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र हूं और प्रत्येक वस्तु मुझ में है तो भी मैं पृथक हूं। उदाहरणार्थ राधा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्रकट्य होती है, विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर करता है। ये सरकार है, सरकार के विभिन्न विभिन्न विभाग है, डिपार्टमेंट है, तो वो सभी सरकार कहलाते हैं। सरकार की शक्ति से, पावर से चल रहे हैं, जो भी अफसर या कर्मचारी बैठा है उस शक्ति की शक्ति है सरकार ने, तो सरकार ही है। लेकिन सरकार फिर भी उससे अलग है, जो हमारा मंत्रिमंडल, अभी तो राजा नहीं होता, अभी तो कैबिनेट होती है ना, या पार्लियामेंट कह लीजिए, तो फिर भी उससे अलग है, लेकिन उसका विस्तार है अलग अलग विभागों में। तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो, यह एक मोटा सा उदाहरण दिया गया। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान है वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित है। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है और जैसे कि भगवद्गीता में कहा गया है विष्ठाभ्यम अहम इदम कृत्स्नम, वे अपने सकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। तो बिल्कुल यही बात इसमें भगवद्गीता के 9वें अध्याय के 14 श्लोक में प्रभुपाद समझाई है, भगवान ने बोली कि भगवान सर्वव्यापक है लेकिन वो सर्वव्यापक होते हुए भी फिर भी अपने धाम में भगवान उपस्थित है, हमेशा विराजमान रहते हैं। और ये ज्ञान कब होगा, जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी तपस्या के द्वारा, है ना। बिना तपस्या के, बिना हमारी सत्ता शुद्ध हुए हम कभी भी इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हम भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि बता रहे ब्रह्मा जी के संप्रदाय में हम हैं और गुरु के मार्गदर्शन में यदि जो हमारे को विधि दी गई है इसका हम ठीक से पालन करें, तीव्र न भक्ति योग है ना, अकाम सर्व काम आवा मोक्ष काम उधार दी, तीव्र न भक्ति योग है ना ये ताम पुरुषाम परम। तो ये जो विधि दी गई है, एक जगह प्रभा लिखते हैं कि भक्ति की मंद विधि, तो मंद विधि मतलब क्रमशः है ना, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया ये धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ता है, लेकिन इस विधि को चाहे मंथ हो या जो भी हो, इससे ज्यादा फास्ट कोई विधि नहीं, और इस विधि का तीव्रता के साथ अभ्यास करना चाहिए, तीव्रेण भक्ति योग। तो इसमें तपस्या भी है, इसमें ज्ञान भी है, दान भी है, सब कुछ है। तो निष्कर्ष यह है कि जैसे बोला गया यज्ञ दान तपस्या, इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, इसी से व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है। लेकिन ये कैसे होना चाहिए, ये समुचित निर्देशन में, गुरु के मार्गदर्शन में होना चाहिए। हम अपनी कोई विधि नहीं बना सकते किसी प्रकार का भी, जो है तपस्या करने के लिए या कैसे भगवान की सेवा करनी है। और जब इस प्रकार से हमारा शुद्धिकरण होगा, जैसे शुद्धिकरण होता चला जाएगा, वैसे वैसे हमें जो है भगवान के बारे में भी जानकारी या ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्राप्त होता चला जाएगा। और क्या ज्ञान प्राप्त होगा कि सारी सृष्टि जो है उन्हीं की शक्ति का प्राकट्य है, मैं भी, मेरा शरीर भी, सब कुछ। तो हमेशा हर जगह भगवान को देखना चाहिए। भक्त लोग जो है हमेशा भगवान से जो देखते हैं, स्थावर जंगम ने देखी देखी तार मूर्ति, ऐसा करके चेतन जगत में जो बताया, सर्वत्र हो इष्ट देव स्फूर्ति, कि वही देखते हैं कि स्थावर यानी कि चराचर नहीं है, है ना, वो सब जगह देखते हैं भगवान की शक्ति का प्राकट्य है। और भगवान जो है फिर भी उनसे अलग है। और हमारे लिए जो मुख्य तपस्या है, जैसे कि हम जानते हैं, भगवान के नामों का जप करना, चार नियमों का पालन करना दृढ़ता पूर्वक। यदि हम ऐसा करेंगे तो इसी से हमारा जो है हम कलयुग के इस कलमश से मुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, विराम देते हैं। धन्यवाद आप सभी का। कोई आपका प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।
धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। मैं जानना चाहता था प्रभु जी कि जैसे एक भक्त, जैसे ब्रह्मा जी के साथ भी ऐसा हुआ कि उन्होंने तपस्या की, उनको एक साक्षात्कार हुआ कि भगवान हर जगह है, तो एक भक्त के जीवन में अगर ऐसा होता है, भक्ति की तपस्या करके उसका साक्षात्कार होता है, तो उससे उसका क्या अनुभव रहता है, उसको कैसे वो इस्तेमाल करता है, क्या उसकी चेतना बनती है, या अगर साक्षात्कार हो भी जाए भगवान अगर हर जगह है तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल करता है, उसके अंदर क्या विकल्प आता है या क्या होता है, वो जाना जाता था कि कैसे
ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती न कांक्षती समा सर्वस्व भूतेषु मद भक्ति लभते ब्रह्म। तो भक्त का उद्देश्य भगवान की सेवा करना होता है, उसको जो भी साक्षात्कार होता है, जो भी ज्ञान होता है, जो भी उसके पास साधन है, वो केवल उसका उपयोग करता है भगवान की सेवा में। सचकार उसको हो गया कि अभी सभी कुछ जो है सब जगह भगवान उपस्थित है सर्वत्र, है ना, तो वो किसी द्वेष नहीं करता, सबका सबको समुचित व्यवहार करता है, है ना, कि जैसे लेकिन उसे द्वेष नहीं करता। क्यों द्वेष करना है किसी से, अगर कोई उसको लगता है कि यहां से मेरे को हानि मिलेगी तो उसे दूर रहता है, लेकिन द्वेष नहीं करता। किसी को हानि क्यों पहुंचानी है, अननेसेसरी, है ना, उसका उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं है। उसको उद्देश्य तो क्या है कि भाई यहाँ फंस गया हूँ मैं, किसी से गिर गया हूँ संसार में ना, अब यहाँ से बाहर निकलो, ज्ञान हो गया, भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है ना, इसका मैं सही उपयोग करूँ यहाँ से बाहर निकलने में, भगवान की सेवा करने में। तो उसको जो भी, जैसे जैसे वो भक्ति में आगे उन्नत होता रहता है, वो अपनी साधना को, अपनी सेवा को और ज़्यादा प्रगाढ़ बनाता रहता है। उसका तो और कोई उद्देश्य होता ही नहीं भक्त का, उसका तो एक ही उद्देश्य है भगवान की सेवा करना और मार्गदर्शन में हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है कि अभी उसको साक्षात्कार हो गया तो अभी मेरे को मार्गदर्शन की आवश्यकता किया तो मैं तो सिद्ध हो गया, तो मार्गदर्शन तो हमेशा चलता रहता है। तो उस मार्गदर्शन में रहते हुए वो आगे बढ़ता रहता है, और मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती भी है, हमेशा पड़ेगी। जैसे आपका प्रश्न है तो यही है कि अभी साक्षात्कार हो गया तो फिर मार्गदर्शन मिलता है, अभी क्या करना है इसके आगे। जैसे साक्षात्कार होता चला जाएगा तो आप जो भी आपको मार्गदर्शक है उससे आप शेयर करेंगे, फिर बताएंगे ठीक है अभी आपको आगे करना है। ठाकुर भक्ति मोहन जी एक पुस्तक में लिखते हैं, ग्रंथ में नियम आग्रह के ऊपर उनका एक प्रस्ताव है कि प्रत्येक स्तर के लिए अलग अलग नियम, कर्मी के नियम अलग हैं, ज्ञानी के अलग हैं और भक्त के अलग हैं, और भक्त के अंदर भी, भक्ति के अंदर भी अलग अलग स्तर है, तो अलग अलग स्तर के ऊपर जाकर के नियम भी जो है उनमें भी थोड़ा थोड़ा एडिशनल ट्रेशन होता रहता है। तो हर एक स्तर के लिए अलग अलग नियम, तो वो इसलिए मार्गदर्शन चाहिए हमेशा कि अभी मेरा ये स्तर है, अभी मेरे को क्या करना है, अभी मेरा ऐसा है, अभी मेरे को क्या करना है ना। तो तो वो मार्गदर्शन मिलता रहेगा और उसके अनुसार चलते रहेंगे। ये ऐसा कभी भी नहीं है कि हाँ जी एक टेलर में प्रोग्राम मिल गया बस हमेशा के लिए और अभी ही चलेगा लास्ट तक। चलेगा तो यही भगवान के नामों को जप करना है, इन नियमों को पालन करना है, लेकिन जो उसकी जो सूक्ष्मता है यानी कि थोड़ा थोड़ा जो उसमें जो होता वेरिएशन होता है वो उसके लिए मार्गदर्शन चाहिएगा। जैसे कि अभी का प्रश्न है कि साक्षात्कार तो क्या करता है, तो उसको मार्गदर्शन मिलता है, करना तो भगवान की सेवा ही है, अभी क्या सेवा करनी है कैसे करनी है वो मार्गदर्शन मिलता रहेगा और करते रहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का। श्री श्री राधा राधे गर्मन भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुंदरा महारानी की जय, श्री श्री गौरकाय की जय, श्री द्रौपाद की जय, ग्रंथराय श्रीमद भागवतम की जय, सम्यक भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद।